एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया। तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया। तड़पाया गया, प्रश्नों पर प्रश्न पूछा गया, निर्दोष था दोष लगाया गया। प्रश्नों पर प्रश्न पूछा गया, निर्दोष था दोष लगाया गया। मेरा प्रभु तुझे ना कहा, कांटों का ताज पहनाया गया। मेरा प्रभु कुछ ना कहा, कांटों का ताज पहनाया गया। तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया। तड़पाया गया, क्रूस पर वो टंगाया गया, पापों से हमारे वो रंगाया गया। श्रापित क्रूस पर वो टंगाया गया, पापों से हमारे वो रंगाया गया। तीसरे जिलाया गया, पिता के दही ने बिठाया गया। तीसरे दिन फिर जिलाया गया, पिता के दही ने बिठाया गया। तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया। तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया। मेरा यीशु मसीह सब सहता गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन के साथ आता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम सब तेरे पास आते हैं, तो हमें ग्रहण कर और तेरा राज के लिए तैयार कर। अभी हम तेरे वचन से सुनने जा रहे हैं पिता, हमारे मन हृदयों को खोल और हमें तेरे वचन को गहराई से समझने के लिए मदद कर और तेरे नज़दीक ला। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तो तेरे वचन से सुन करके उन्हें आशीषित कर, और मेरे संग हो तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर कि मैं तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से तेरा वचन को बतला सकूँ। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन। आज हमारा संवाद का शीर्षक है गतसमनी में यीशु मसीह फसह के पर्व के समय अपने चेलों के साथ भोजन किया। यह प्रभु का ब्यारी था। इसमें वह उन्हें बताया कि शीघ्र ही वह अपना जीवन इस संसार के लिए बलिदान करने जा रहा है। फिर वह उन्हें सांत्वना दिया और कहा कि वे ढाढ़स बांधे रहे और घबराए नहीं। उन्हें कहा कि उनका मन व्याकुल ना हो और उन्हें कहा कि वह उन्हें फिर लेने आएगा। फिर हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ धीरे धीरे गतसमनी के बाग की ओर जाने लगा। फसह पर्व की रात को आकाश में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। फसह के लिए आए तीर्थ यात्रियों के तंबुओं में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। यीशु बड़ी गंभीरता के साथ अपने शिष्यों को निर्देश देते हुए उनसे बातें करते हुए चल रहा था, परंतु जब वे लोग बाग के करीब पहुंचे तो यीशु बिल्कुल खामोश हो गया। इस स्थान पर प्रार्थना और चिंतन मनन करने के लिए वह अक्सर आया करता था, परंतु उसके जीवन की इस अंतिम रात की तरह कभी भी ऐसी पीड़ा उसे नहीं सहनी पड़ी थी। इस धरती के अपने पूरे जीवन भर वह परमेश्वर की इस उपस्थिति के प्रकाश में चलता रहा था। जब शैतान द्वारा उभारे गए मनुष्यों से उसका सामना हुआ, तब वह कहता था कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। यूहन्ना 8:29। परंतु इस समय इस बाग में ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति की रोशनी उसे दूर हो गई है। अब इस समय उसकी गिनती पापियों में हो गई है। पाप में गिरी इंसानियत के भार को उसे अपने ऊपर लेना अवश्य है। जिसने कभी पाप को जाना ही नहीं, उसी पर हम सब के पापों और अपराधों का बोझ डाल दिया गया। पाप का भयानक रूप उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। पाप का बोझ इतना भारी लग रहा था कि उस पर आतंक छा गया कि वह अपने पिता के प्यार से सदा सदा के लिए वंचित हो जाएगा। यह अनुभव करते हुए कि पाप के विरुद्ध परमेश्वर का कोप कितना भयानक है, उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। जब बाग के पास पहुँचने वाले थे तो चेलों ने ध्यान से देखा कि उनके गुरु का चेहरा बिल्कुल बदला सा नजर आ रहा है। इससे पहले उन्होंने उसे कभी भी इतना खामोश और उदास नहीं देखा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उसकी उदासी गहराती जा रही थी। फिर भी उन्हें साहस नहीं हुआ कि उससे उसकी उदासी का कारण पूछे। उसके चलने से ऐसा लग रहा था कि अब वह गिरने ही वाला है। गतसमनी बाग में पहुंचने के बाद चेलों ने उस स्थान की तलाश आरंभ कर दी जहां पर प्राय वह जाया करता था, ताकि उनका गुरु विश्राम कर सके। अब उसके पैर बड़ी कठिनाई से उठ रहे थे। बड़े जोरों से उसके मुंह से आह निकली, जैसे कि बहुत बड़े बोझ के तले दबा जा रहा हो। उसके साथियों ने दो बार उसे सहारा दिया, नहीं तो वह जमीन पर गिर गया होता। बाग के प्रवेश द्वार के पास यीशु ने तीन चेलों को छोड़कर बाकी सबों को वहीं रुक जाने और उसके लिए तथा अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करने को कहा। वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर बाग में विश्राम स्थल की ओर चला गया। ये तीन शिष्य मसीह के बहुत ही करीबी साथी थे। इन तीनों ने पर्वत पर रूपांतर के समय मसीह की महिमा को देखा था। उन्होंने मूसा और एलिया को मसीह से बातें करते देखा था और उन्होंने आकाशवाणी को भी सुना था। अब उस महान संघर्ष के समय मसीह ने चाहा कि वे उसके पास रहे। इस विश्राम स्थल पर अक्सर उन्होंने उसके साथ रात बिताया था और उन समयों पर जागते और प्रार्थना करते हुए वे लोग मसीह से थोड़ी दूरी पर जाकर सो भी जाते थे और सुबह को वह उन्हें जगाता तथा आगे काम करने के लिए उसके साथ चले जाते थे। परंतु इस समय उसने चाहा कि वे तीनों उसके साथ प्रार्थना करने में रात बिताएं। फिर भी वह नहीं चाहता था कि जिस पीड़ा को वह सह रहा है वे उसे देखें। मसीह ने उन तीनों चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं, और वह उनसे थोड़ी दूर चला गया जहां वे उसे देख और सुन सकते थे। मसीह मुंह के बल जमीन पर साष्टांग दंडवत के रूप में गिर गया। उसने महसूस किया कि पाप के कारण वह पिता से अलग होने जा रहा था। उसके और पिता के बीच इतनी चौड़ी, गहरी और भयानक खाई थी, उसे देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। इस पीड़ा से बचने के लिए उसे ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग नहीं करना था। उसे तो एक मनुष्य के रूप में मनुष्यों के पापों का परिणाम अवश्य भुगतना था। मनुष्य के रूप में पाप के विरुद्ध परमेश्वर के कोप को सहन करना था। इस समय मसीह एक अलग ही रूप में दिखाई पड़ रहा था, जैसा कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसके उस पीड़ा को भविष्यवक्ता ने इन शब्दों में वर्णन किया है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है, तो उस चरवाहे को काट। जकरिया 13:7। पापी मनुष्यों के बदले में और जमानतदार होने के कारण मसीह को ईश्वरीय न्याय के कारण दुख उठाना था। उसने देखा कि न्याय का मतलब सच्चा न्याय है। अभी तक दूसरों के लिए बिचौलिया का काम कर रहा था और अब वह अपने स्वयं के लिए बिचौलिया चाहने लगा। जब मसीह ने महसूस किया कि पिता के साथ उसकी एकता टूटने जा रही है, तो वह डर गया कि आने वाले संघर्ष के समय एक मनुष्य के रूप में शैतान की शक्ति का सामना वह नहीं कर पाएगा। जंगल में परीक्षा के समय पूरी मनुष्य जाति का भाग्य दांव पर लगा था और मसीह उस समय विजयी हो गया था और अब वह परीक्षा लेने वाला अंतिम और भयानक संघर्ष के लिए आ रहा था। इस घड़ी के लिए वह पिछले 3 साल से, जब से मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ किया था, प्रतीक्षा और तैयारी करता आ रहा था। शैतान अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठा था। यदि वह यहाँ पर हार गया तो वह फिर उसकी सारी आशा समाप्त हो जाएगी। इस पृथ्वी का उसका साम्राज्य छीन कर मसीह का हो जाएगा और उसे निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। परंतु यदि उसने मसीह पर विजय हासिल कर लिया तो पृथ्वी का राज्य शैतान का हो जाएगा और मनुष्य जाति सदा सदा के लिए उसके अधीन हो जाएगी। मसीह के सामने संघर्ष का जो विषय था, उसके लिए उसकी आत्मा परमेश्वर से जुदाई की शंका से त्रस्त थी। शैतान ने उससे कहा कि यदि वह पापी जगत का जमानतदार बनता है तो पिता से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना पड़ेगा। उसकी गिनती शैतान के राज्य के नागरिक के रूप में होगी। फिर वह कभी भी परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकेगा। इस बलिदान से वह कौन सा लाभ पाने वाला था? इंसान का अपराध और कृतघ्नता कैसी नाउम्मीदी दिखा रही थी। शैतान ने अपनी कठिनतम परिस्थिति में मुक्तिदाता को डाल दिया था। जो लोग यह दावा कर रहे थे कि वे लोग संसारिक अथवा आत्मिक रूप में दूसरे लोगों से बेहतर हैं, वे चुनी हुई जाति हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वे कलीसिया की न्यू तथा केंद्र बिंदु हैं और उन पर मोहर हो चुकी है, उन्होंने तो तुम्हें ठुकरा दिया है। वे सब तो तुम्हें मिटा डालने की ताक में हैं और तुम्हारे शिष्य जो तुम्हारे उपदेशों को सुनते रहे, कलीसिया के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे, उन्हीं में से एक तुम्हारे साथ विश्वासघात करेगा और तुम्हारा एक अत्यंत विश्वासी और बड़े बोल बोलने वाला चेला तुम्हारा इनकार कर देगा। इन सब बातों को सोचकर मसीह पूर्ण रूप से घृणापूर्ण अविश्वास से विचलित हो गया था। जिन लोगों को बचाने के लिए अपने आप को इतने बड़े संकट में डाल दिया था, जिन्हें अपने से भी अधिक प्यार किया, वे ही लोग शैतान के षड्यंत्र में शामिल हो गए। यह देखकर उसका हृदय फटा जा रहा था। यह संघर्ष बहुत ही भयानक था और इसका कारण उसकी अपनी जाति का अपराध, उसी पर इल्जाम लगाने वाले और उसके साथ विश्वासघात करने वाले लोग और संसार भर की बुराइयां थी। मनुष्यों के पापों का बोझ मसीह पर बहुत भारी पड़ रहा था और पाप के विरोध परमेश्वर का कोप उसके जीवन को ही मिटा दे रहा था। इंसान को बचाने के लिए जो कीमत दी जाने वाली थी, उसको देखें और उस पर विचार करें। मसीह अपनी उस मानसिक पीड़ा में ठंडी जमीन से एक ऐसा चिपक गया था जैसे कि परमेश्वर से और दूर होने से बचना चाह रहा हो। उसके औंधे पड़े शरीर पर रात की ठंडी ओस पड़ रही थी, परंतु वह उससे बचना ना चाहा। उसके पीले पड़ गए होठों से दर्द भरी आह निकलती है, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, और इतनी वेदना होते हुए भी उसके मुंह से निकलता है, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इंसान की यह प्रकृति होती है कि दुख के समय वह दूसरों से सहानुभूति चाहता है। यही बात मसीह ने भी हृदय की गहराई से महसूस किया। पाप कितना घृणित और भयानक होता है, मसीह के सामने यह बहुत ही दुखदायी परीक्षा थी कि मानव जाति अपने पाप और अपराध के परिणाम का बोझ उठाए, जबकि वह परमेश्वर के सामने निष्पाप और निर्दोष बना रहे। यदि वह जान जाए कि उसके चेले उसके इस बलिदान को जान और समझ रहे हैं तथा उनके मनों में उसके लिए सहानुभूति है, तो उसे ढाढ़स और साहस मिल जाएगा। बड़ी कठिनाई के साथ जमीन से उठकर डगमगाते पैरों से उस ओर चल पड़ा जिधर अपने तीन साथियों को छोड़ गया था, परंतु वह उन्हें सोता पाया। यदि वह उन्हें प्रार्थना करते हुए पाता तो उसे बड़ी शांति मिली होती। बाग में कदम रखने से पहले यीशु ने अपने चेलों से कहा था, तुम सब ठोकर खाओगे, परंतु उन लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ यह प्रतिज्ञा किया था कि वे उसके साथ जेल जाने और मरने के लिए तैयार हैं। और वह आत्मविश्वासी पतरस बेचारा बड़ी शान से कहा था, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यहाँ हम पाते हैं कि पतरस भी सो गया था और यीशु का प्रिय चेला यहूना, जो अपना सिर मसीह की छाती से लगाकर अपने प्रेम का इजहार किया करता था, वह भी सो रहा था। यीशु का आवाज सुनकर चेले जाग पड़े, परंतु उसे पहचानने में उन्हें बड़ी कठिनाई हुई क्योंकि उसका चेहरा मानसिक संताप और पीड़ा से बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। पतरस को संबोधित करते हुए यीशु ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। चेलों की कमजोरी ने यीशु के मन में उनके लिए सहानुभूति पैदा कर दी। उसने उन्हें झिड़का नहीं बल्कि उनसे अनुरोध किया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अपने उस महान मानसिक पीड़ा के समय भी वो अपने चेलों की कमजोरियों की अनदेखी कर रहा था। उसने कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। एक बार फिर परमेश्वर का पुत्र इंसानी पीड़ा से त्रस्त होकर थका हुआ मूर्छित सा हो गया और लड़खड़ाते कदमों से वापस अपने उसी स्थल पर चला गया जहां वह रात भर संघर्ष कर रहा था। इस वक्त का उसका कष्ट पहले से भी अधिक पीड़ादायक था। जब वह संताप ने उसकी आत्मा को घेर लिया तो उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। मुक्तिदाता के शब्द नींद में डूबे चेलों के कानों में पड़े, हे मेरे पिता, यदि यह कटोरा मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। क्या वह निर्दोष पाप के श्राप के परिणाम को अपने ऊपर ले लेगा ताकि पापियों को बचा ले? यीशु के कांपते होठों से पीड़ा से कहराती हुई आवाज निकलती है, हे मेरे पिता, यदि यह कटोरा मेरे पिए बिना नहीं हट सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रार्थना को उसने तीन बार दोहराया। उस अंतिम बलिदान को देने से पहले इंसानियत तीन बार लड़खड़ाती है, परंतु अब जगत के उद्धार के सामने मनुष्य जाति का इतिहास आ गया था। मसीह ने देखा कि आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को यदि उन्हीं पर छोड़ दिया गया तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। वह मनुष्य की असहाय दशा को देखता है, वह पाप की शक्ति को देखता है। उसकी आंखों के सामने इस संसार का क्लेश, कष्ट, विलाप और रोना चलचित्र के समान घूमने लगता है। वह इस जगत की ओर आने वाली दुर्दशा को देखता है और अपना फैसला निश्चय कर लेता है, चाहे जो कीमत उसे चुकानी पड़े इंसान जाति को वह बचाएगा। वह अपने लिए खून के बपतिस्मे को स्वीकार कर लेता है ताकि नाश होने वाली करोड़ों आत्माएं उसके द्वारा अनंत जीवन का लाभ उठा सके। उसने उस स्वर्गीय दरबार को जहाँ पर पवित्रता, खुशी और महिमा भरी पड़ी है, उसे त्याग दिया ताकि एक खोई हुई भेड़, एक पूरा संसार जो पाप में गिर गया था, उसे बचा ले। और अब वह अपने उद्देश्य से मुंह नहीं मोड़ेगा। वह उस जाति को संतुष्ट करेगा जिसने जानबूझकर पाप किया था। उसकी प्रार्थना अब केवल समर्पण की प्रार्थना रह गई थी। यदि यह कटोरा मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। मुक्तिदाता सरकुंड में अकेला पीस रहा था और दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां पर उसके साथ नहीं था, परंतु परमेश्वर अपने पुत्र के साथ उसके दुख में शामिल था। हाँ प्यारो, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जान कुर्बान कर दिया। परमेश्वर पिता हमसे इतना प्रेम किया कि वह अपना इकलौता बेटा को दे दिया। हमें बचाने के लिए एक ही उपाय था, यीशु मसीह अपना जान का बलिदान करता। यह बहुत कठिन थी, परंतु यीशु मसीह उसे दे दिया क्योंकि वह हमसे बहुत प्यार करता था। आइए हम उसे अपनाएं और अपने जीवन को बचाएं, क्योंकि हमारा बचाव यीशु मसीह के जीवन को अपनाने से होता है। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष दे, आप सबों को आशीष दे। आइए हम विनती करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचन के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे संवाद के लिए पिता, कि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि तूने अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। उसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया कि हम बचाए जा सके। हमें तेरे पास ला, हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके जीवन पर विश्वास करें और अपना आत्मा का उद्धार पाने सके। हमें इसके लिए मदद कर, तेरा आत्मा के द्वारा मदद कर, मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो और उन सबों को मदद कर। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।